ओम श्री सतगुरु परमात्मा ने नमः। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, यह सब जगत आडंबर मन ही ने रचा है और सब मन रूप है और मन ही कर्म रूप है, यह आपके कहने से मैंने निश्चय किया, परंतु इसका अनुभव कैसे हो? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह मन भावना मात्र है। जैसे प्रचंड सूर्य की धूप मरुस्थल में जल होकर भासती है, तैसे ही आत्मा का आभास रूप मन होता है। उस मन से जो कुछ जगत भासता है वह सब मन रूप है। कहीं मनुष्य, कहीं देवता, कहीं दैत्य, कहीं पक्षी, कहीं गंधर्व, कहीं नागपुर आदि जो कुछ रूप भासते हैं वे सब मन से ही विस्तार को प्राप्त हुए हैं, पर वे तृण और काष्ठ के तुल्य हैं। उनके विचार से क्या है? यह सब मन की रचना है और मन अविचार से सिद्ध है, विचार करने से नष्ट हो जाता है। मन के नष्ट हुए परमात्मा ही शेष रहता है, जो सबका साक्षीभूत, सर्व से अतीत, सर्वव्यापी और सबका आश्रयभूत है। उसके प्रमाद से मन जगत को रच सकता है। इस कारण कहा गया है कि मन और कर्म एक रूप है और शरीरों के कारण है। हे रामचंद्र जी, जन्म मरण आदि जो कुछ विकार है वे मन से ही भासते हैं और मन अविचार से सिद्ध है और विचार किए से लीन हो जाता है। जब मन लीन होता है तक कर्म आदि भ्रम नष्ट हो जाते हैं। जो इस भ्रम से छूटा है वही मुक्त है और वह पुरुष फिर जन्म मरण को नहीं प्राप्त होता। श्री योग वासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 37। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जगत की स्थिति है, सो सब चंचल आकार और विपरिणाम रूप है। जैसे समुद्र में तरंग चंचल रूप है, तैसे ही जगत की गति चंचल है। आत्मा से जगत स्वतः उपजता है, किसी कारण से नहीं होता, और पीछे कारण कार्य भाव हो जाता है, वही चित्त में दृढ़ हो भासता है। आत्मा में यह कोई नहीं। जैसे जल से तरंग स्वाभाविक उठकर लय हो जाते हैं, तैसे ही आत्मा से स्वाभाविक जगत उपज के लय होते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु में तपन में मरुस्थल जल किनाई स्पष्ट भासता है, पर जल कुछ भी नहीं होता है। और जैसे मत्स्य मत्त पुरुष को आपको और का और जानता है, तैसे ही पुरुष आत्मरूप है, चित्त से आपको देवता मनुष्य आदि शरीर जानते हैं और कहते हैं, हे रामचंद्र जी, यह जगत आत्मा में न सत है न असत है। जैसे सुवर्ण में भूषण है, तैसे ही मूढ़ जीव आपको आकार मानते हैं। ऐसे तुम दृश्य को त्याग के दृष्टा में स्थित हो और जिससे शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि सबको जानता है, उसी को आत्म ब्रह्म जानो। वह सर्व में पूर्ण स्थित है, स्वच्छ और निर्मल है। आत्मसत्ता में एक अद्वैत कल्पना कुछ नहीं। जब तक आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु भासती है, तब तक वासना उसकी ओर धावती है। हे रामचंद्र जी, आत्मा से व्यतिरेक कुछ सिद्ध नहीं होता, तो किसकी वांछा करें, किसका अनुसंधान करें और किसका ग्रहण त्याग करें? आत्मा को इप्सित अनिप्सित इष्ट अनिष्ट आदि कोई विकार विकल्प स्पर्श नहीं करता, और कर्ता कारण कर्म तीनों की एकता है। न कोई आधार है न अध्येय है, द्वैत कल्पना असंभव है और अहम त्वम आदि कुछ नहीं, केवल ब्रह्म सत्ता स्थित है। ऐसे जान के सर्वदा निर्द्वंद्व होकर सर्व संताप से रहित कार्य में प्रवृत्त हो जाओ। पूर्व जो तुमने कुछ किया और नहीं किया, उस करने और न करने से तुमको क्या सिद्ध हुआ, और पाने योग्य कौन पद पाया, और भूतों की गिनती में क्या बात है। तुम आपको हृदय में अकर्ता की भावना करो और बाहर से इंद्रियों से जगत के कार्य करो। जब स्थिरता रूपी समुद्र में तुम्हारी वृत्ति धैर्यवान होगी, तब शांतात्मा होंगे। पर दृश्य जगत में तो दूर से दूर भी गए हृदय में शांति नहीं होती। जहां चाहे वहां जावे और चाहे जैसे पदार्थ पाने का यत्न करे, पर उसके पाने से भी शांति प्राप्त न होगी। जगत के सर्व दृश्य पदार्थ त्याग कर जो शेष अपना स्वरूप रहता है, वही चिदात्मा है, उसमें स्थित हुए से शांति प्राप्त होती है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जो ज्ञानी पुरुष है उसमें कर्तव्य भाव भी दृष्टि आता है और हिंसा आदि तामसी कर्म भी करते हैं, तो भी स्वरूप के ज्ञान से वे अकर्ता ही है, उन्होंने कदाचित कुछ नहीं किया। और जो मूढ़ अज्ञानी है, वे जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। मन में सत्य जान के जिस पदार्थ के ग्रहण की इच्छा करता है, सो फुरना वासना रूप होता है। उसी सद्भाव फुरने का नाम कर्तव्य है और उसी चेष्टा से फल की प्राप्ति होती है। जिस पदार्थ को सत्य जान के वासना फुरती है, उसका अनुभव होता है। शरीर करे अथवा न करे, पर जैसी वासना मन में दृढ़ होती है, वह शुभ हो अथवा अशुभ, उसी के अनुसार दृश्य भास आता है। शुभ से स्वर्ग भासता है और अशुभ से नरक भासता है। जिस पुरुष को आत्मा का ज्ञान है, यद्यपि वह प्रत्यक्ष अकर्ता है, तो भी अनेक कर्म के फल को अनुभव करता है। और जो ज्ञानवान है, उनके हृदय में पदार्थों का सद्भाव और वासना दोनों नहीं होती, क्योंकि उनमें कर्तव्य का अभाव है। यद्यपि वे करते हैं, तो भी कर्तव्य के फल को नहीं प्राप्त होते और संसार को असत्य जानते हैं। केवल शरीर का स्पंद मात्र उनका कर्म है, हृदय से बंधनवान नहीं होते। पूर्व के प्रारब्ध से सुख दुख फल उनको प्राप्त भी होता है, परंतु वे आत्मा से भिन्न उसको नहीं जानते। वे ब्रह्म ही देखते हैं और जो अज्ञानी है, वे अवयव के स्पंद में आपको कर्ता मानते हैं और उसके अनुसार सुख दुख भोगते और मोह को प्राप्त होते हैं। जिसका मन अनात्म भाव में मग्न है, वे अकर्ता हुए भी कर्ता होते हैं। और मन से रहित केवल शरीर से किया हुआ कर्म किया भी न किया ही है, इससे मन ही करता है, शरीर कुछ नहीं करता। यह सब जगत मन से उपजा है, मन रूप है और मन ही में स्थित है। जिसका मन अमन भाव को प्राप्त हुआ है, उसको सब शांत रूप है। जैसे तीक्ष्ण धूप से मृग तृष्णा की नदी भासती है और वर्षा होती है तब शांत हो जाती है, तैसे ही जब आत्मज्ञान होता है तब यह सब जगत शांत हो जाता है और संसार के सुख दुख स्पर्श नहीं करते हैं। न वह चंचल है, न सत्य है और न असत्य है, सर्व विकार से रहित शांत रूप है। वह संसार की वासना में नहीं डूबता, पर अज्ञानी डूबता है, क्योंकि उसका मन संसार भ्रम में मग्न रहता है और सदा पदार्थों की तृष्णा करता है, ज्ञानी का नहीं करता। हे रामचंद्र जी, और दृष्टांत सुनो कि अज्ञानी को अकर्तव्य में भी कर्तव्य है और ज्ञानी को कर्तव्य में अकर्तव्य है। जैसे कोई पुरुष शैया पर सोया हो और स्वप्न में गिर करके दुख पावे तो वह अकर्तव्य में कर्तव्य हुआ, और जैसे समाधि में स्थित होकर गड्ढे में गिरा है पर उसको सर्व शांत रूप है, यह कर्तव्य में भी अकर्तव्य हुआ। क्योंकि शैया पर सोया था, उसका मन चलता था, इससे अकर्तव्य में उसको कर्तव्य हुआ और फिर दुख का अनुभव करने लगा और दूसरे को सुख का अनुभव हुआ। इससे यह निश्चय हुआ कि जैसा मन होता है तैसे ही सिद्धांत सिद्धता भी प्राप्त होती है। तुम भी असंसक्त होकर कर्म करो, तब अकर्ता हो रहोगे। जो कुछ जगत भासता है वह आत्मा से व्यतिरिक्त नहीं है। जिसको यह निश्चय होता है उस ज्ञानवान को सुख दुख स्पर्श नहीं करते, उसे आधार आधेय दृष्टा दर्शन दृश्य इच्छा आत्मा से भिन्न कुछ नहीं भासता। जब ऐसे निश्चय होता है कि मैं देह नहीं, सब पदार्थों से व्यतिरेक और बाल के अग्र के सौवे भाग से भी सूक्ष्म हूं, अथवा जो कुछ दृश्य जगत है सो सर्व मैं ही हूं, सर्व तत्व का प्रकाशक और सर्वव्यापी हूं, इस निश्चय से उसको सुख दुख का क्षोभ नहीं होता और विगत ज्वर होकर स्थित होता है। यद्यपि दुख और संकट ज्ञानवान को भी अप्राप्त होते हैं तो भी उसको वास्तव से नहीं भासते। वह परमानंद से आनंदवान लीला मात्र विचरता है। जैसे चंद्रमा की चांदनी शीतल प्रकाशित होती है, तैसे ही वह पुरुष शीतल प्रकाशवान होता है। उसको न चिंता होती है न दुख होता है। वह शांतरूप कर्म को करता भी है पर करता है, क्योंकि मन से सदा अलेप रहता है। हे रामचंद्र जी, हस्त पादादिक इंद्रियों से करने का नाम कर्म नहीं, मन के करने का नाम कर्म है। मन ही सब कर्मों का करता है। अहम त्वम सब भाव सब लोगों का बीज सर्वगत मन है। जब मन नाश हो तब सब कर्म नष्ट हो जाते हैं और सब दुख मिट जाते हैं। जैसे बालक मन से नगर रचे और फिर लीन कर ले तो उसको उपजाने और लीन करने में हर्ष शोक कुछ नहीं होता, तैसे ही परमार्थ दर्शी को किसी कर्म का लेप नहीं होता। वह करता हुआ भी कुछ नहीं करता और उसमें कर्तव्य भोक्तव्य सुख दुख अज्ञानी मोह से आध्यारोप करते हैं और कुछ नहीं। ज्ञानवान को बंध मोक्ष सुख दुख कुछ नहीं भासता, क्योंकि वह असंसक्त मन है। जिसका मन आसक्त है उसको नाना दृश्य भासता है और ज्ञानवान को केवल आत्मसत्ता जो एक अद्वैत कलना से रहित है भासती है। जैसे जल से तरंग भिन्न नहीं, तैसे ही आत्मा से जगत भिन्न नहीं। न कोई बंध है, न कोई मोक्ष है, न कोई बांधने योग्य। अज्ञान दृष्टि से दुख है, बोध से लीन हो जाता है। बंध और मोक्ष संकल्प से कल्पित मिथ्या रूप है। तुम इस मिथ्या कल्पना अनात्म अहंकार को त्याग करके आत्मनिश्चय करो और धीर बुद्धिमान होकर प्रकृत आचार को करो, तब तुम्हें कुछ स्पर्श न करेगा। राम जी ने पूछा, हे भगवान, सच्चिदानंद अद्वैत निर्विकार आदि गुणों से संपन्न ब्रह्म तत्व में अविद्यमान विचित्र जगत और विद्यमान अविद्या कहां से आई है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह संपूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप है और ब्रह्म सत्ता सर्वशक्ति है। इस कारण दृश्य रूप हो रहा है और सत्य असत्य एक अद्वैत आदि विश्व रूप भासना है। जैसे जल में जल उल्लास रूप भास नाना प्रकार के तरंग बुदबुदे आवृत होकर भासता है, तैसे ही चिदघन में चिदघन सर्वशक्ति और सर्वरूप होकर फुरता है। कहीं कर्म रूप, कहीं वाणी रूप, कहीं गंगे रूप, कहीं मन रूप और कहीं भरण पोषण और नाश रूप कारण होता है। सब पदार्थों का बीज उत्पन्न करता ब्रह्म सत्ता है। जैसे समुद्र से तरंग उपजकर उसी में लय हो जाते हैं, तैसे ही सब पदार्थ उपजकर ब्रह्म में लय होते हैं। राम जी ने फिर पूछा कि हे भगवान, आपके वचन का उच्चार प्रकट है तो भी कठिन और अति गंभीर है, इनका तोल नहीं पाया जाता और इनका यथार्थ भाव मैं पा नहीं सकता। कहा, मन संयुक्त षड इंद्रियों की वृत्तियों से और सब पदार्थों की रचना से रहित स्वरूप, और कहा जगत जो पदार्थ जिससे उपजता है वह उसी का रूप होता है। जैसे दीपक से उपजा दीपक मनुष्य से मनुष्य और अग्नि से अग्नि होता है, इसी प्रकार कारण से जो कार्य उपजता है सो भी उसी के सदृश होता है। तैसे ही जो निर्विकार आत्मा से जगत उपजा है वह भी निर्विकार होना चाहिए, पर वह तो ऐसे नहीं। आत्मा निर्विकार और शांति रूप है और जगत विकारी और दुख रूप है, उसे कलंक रूप जगत कैसे उपजा? इतना कह वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार राम जी ने कहा, तब ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे रामचंद्र जी, यह सब जगत ब्रह्म रूप है पर नाना प्रकार मलिन रूप जो भासता है सो मलिनता सत्य नहीं। जैसे तरंग के समूह समुद्र में फुरते हैं सो मलिनता रूप धूल नहीं है, वही रूप है। तैसे ही आत्मा में जगत कुछ कलंक नहीं है, वही रूप है। जैसे अग्नि में उष्णता अग्नि रूप है, तैसे ही आत्मा में जगत आत्म रूप है, भिन्न नहीं। राम जी ने फिर पूछा कि हे भगवान, निर्दुख और निधर्म से जो यह दुख रूप जगत उपजा है यही कलंक है। आपके वचन प्रकाश रूप है और मुझे स्पष्ट नहीं भासते, मैं इनको नहीं जान सकता। तब मुनि शार्दुल वशिष्ठ जी ने विचारा कि परम प्रकाश को अभी इसकी बुद्धि नहीं प्राप्त हुई, कुछ निर्मल हुई है और पद पदार्थ को जानता है परंतु परमार्थ वेत्ता नहीं हुआ। जिसको परमार्थ बोध प्राप्त होता है और जिसका मन शांत होता है वह ज्ञातगेय पुरुष मोक्ष उपाय की वाणी के पार प्राप्त होता है और संसार रूपी अविद्यामल उसको नहीं भासता। वह केवल अद्वैत सत्ता देखता है। जब तक मैं और उपदेश राम जी को न करूंगा तब तक इनको विश्राम न होगा। जो अर्ध प्रबुद्ध है उसको सब ब्रह्म ही कहना नहीं शोभता, क्योंकि उसका चित्त भोगों से सर्वथा व्यतिरेक नहीं हुआ। सर्व ब्रह्म के वचन सुनके वह भोगों में आसक्त तो होगा जो नाश का कारण है। जिसको परम दृष्टि प्राप्त हुई है उसको भोग की इच्छा नहीं उपजती। इससे सर्व ब्रह्म का कहना राम जी को सिद्धांत काल में शोभेगा। गुरु को शिष्य के प्रति प्रथम सर्व ब्रह्म कहना नहीं बनता। प्रथम शम दम आदि गुणों से शिष्य को शुद्ध करे, फिर सर्व ब्रह्म शुद्ध तू है ऐसे उपदेश करे तो उससे वह जाग उठता है। जो अज्ञानी अर्ध प्रबुद्ध है उसको ऐसा उपदेश करने वाला गुरु उसको महानरक में डालता है, और जो प्रबुद्ध है उसकी भोग की इच्छा क्षीण हो जाती है और वह निष्काम पुरुष है। इसको उससे अविद्या रूपी मल नहीं रहता और उसको उपदेश करने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार विचार कर अज्ञान रूपी तम के नाश करता और ज्ञान के सूर्य भगवान वशिष्ठ जी ने राम जी के प्रति कहा। वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, कलनारूप कलंक ब्रह्म में है वा नहीं है यह मैं तुमसे सिद्धांत काल में कहूंगा अथवा तुम आप ही जानोगे। ब्रह्म सत्ता सब शक्ति स्वरूप सर्वव्यापक है और सब उसी में रचे हैं। जैसे इंद्रजाली विचित्र शक्ति से अनेक रूप रचता है और सत्य को असत्य और असत्य को सत्य कर दिखाता है, तैसे ही आत्मा मायावी परम इंद्रजाली अघटन घटना है, अर्थात जो न बने उसको भी बनाती है। वह अपनी शक्ति से पहाड़ को गड्ढा करता है, बेल में पाषाण लगाता है और पाषाण में बेल लगता है। वन की पृथ्वी को आकाश करता है और आकाश को पृथ्वी करता है और आकाश में वन लगाता है। जैसे आकाश में गंधर्व नगर भासता है, वन को आकाश करता है। जैसे पुरुष की छाया आकाश हो जाती है और आकाश को पृथ्वी भाव प्राप्त करता है। जैसे रत्न की कंदरा पृथ्वी पर हो उसमें आकाश का प्रतिबिंब पड़े। हे रामचंद्र जी, यह विचित्र रूप दृश्य जो तुमसे कहा सो शुद्ध अव्यक्त तत्व अचैतन्य चिन्मात्र में जो चेतनता का लक्षण जानना है उसी ने रचा है। और कैसा रचा है कि वही चित्त संवेदन फुरने से जगत रूप होकर भासता है। उसमें सब प्रकार और सर्वरूप वही है जो एक रूप अविद्यमान है, तो हर्ष शोक और आश्चर्य किसका मानिए। यह अन्यथा कोई नहीं एक रूप है, इसी कारण हमको समता भाव रहता है और हर्ष शोक आश्चर्य और मोह नहीं प्राप्त होता। ममता और चपलता आदि विकार हमको कोई नहीं होता और ऐसे हम कदाचित जानते ही नहीं। देश काल वस्तु जगत अवसान को प्राप्त हो भासते हैं और उनका विपर्य होना भी भासता है, पर वह अपने स्वभाव में स्थित है, क्योंकि यह दृश्य उनको अपने स्वरूप का आभास फुरता भासता है। जो कुछ दृश्य प्रपंच है वह सत्य चित संवित की स्पंद कला से फुरता है और नाना प्रकार देश काल क्रिया और द्रव्य होकर भासता है। उसको आत्मसत्ता किसी यत्न से नहीं रचती बल्कि स्वाभाविक ही फुरने से फुरते हैं। जैसे समुद्र तरंग को किसी यत्न से नहीं उपजाता और लीन करता, स्वाभाविक ही चमत्कार फुरता और लीन होता है। तैसे ही आत्मा में स्वाभाविक ही सृष्टि फुरती है और लय होती है। जैसे समुद्र और तरंग में कुछ भेद नहीं, तैसे ही आत्मा और जगत में भी कुछ भेद नहीं, वही रूप है। जैसे दूध घृत रूप है, घट पृथ्वी रूप है और रेशम तंतु रूप है, तैसे ही जगत आत्म रूप है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम सहनावतु, सहनौ भुनक्तु, सवीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।